राधिका की शादी को एक महीना होने वाला था। इस एक महीने में लगभग एक हफ्ते के लिए वो अपने घर गई थी। उसमें भी तीन ही दिन बाद अजय उसे लेने पहुंच गया था, जिस पर उसकी बहनों ने उसे कितना छेड़ा था कि जीजा जी पर दीदी ने ऐसा जादू किया कि उनके बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सके। राधिका इस बात पर चुप्पी साध गई, क्योंकि अजय के आने की वजह कोई प्यार का जादू नहीं, उसके शरीर की ज़रूरत, उसकी हसरतें और उसकी ज़िद थी। अजय को उसका परिवार पसंद नहीं था, पसंद तो शायद वो भी नहीं थी, पर वो राधिका को भेजना भी नहीं चाहता था, और उसने तो उसे उनसे बात करने से भी मना किया हुआ था, जिसकी वजह तो वही जाने। खैर, जैसे तैसे राधिका ने ये एक महीना बिता ही लिया था। अजय का नेचर जान गई थी वो, और माँ की सीख के हिसाब से उसे खुश रखने की, इस बदलते माहौल में ढलने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि इस कोशिश में पल पल वो अपनी ही नज़रों में गिरती जा रही थी, अपना ही वजूद मिटता नजर आ रहा था, पर कोशिश जारी थी। राधिका बेटा, आपने दामाद जी से अपने कॉलेज जाने की बात की, आपके पेपर तो अब शुरू होने वाले होंगे। ये सवाल आशुतोष जी ने किया था। राधिका फ़ोन पर बात कर रही थी, उनका ये सवाल सुनकर पल भर को वो चुप्पी साध गई। नहीं पापा, अभी मौका नहीं मिला बात करने का, सोच रही हूँ एक दो दिन में मौका देखकर बात कर लूँ। जल्दी बात कर लो बेटा, पेपर छूट गया तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। उन्हें चिंता थी उसकी, पर जाने क्यों राधिका के चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभर आए थे, जिन्हें छुपाते हुए उसने हामी भर दी। जी पापा, करती हूँ बात। कुछ देर राधिका ने सबसे बात की, फिर फ़ोन काटकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सब काम खत्म करके अभी ही फ्री हुई थी वो, और अब अपने मतलब अजय के कमरे में जा रही थी, जहाँ यकीनन अजय उसका इंतज़ार कर रहा होगा। अरे गलतफहमी ना पालिए, अजय को उसका इंतज़ार इसलिए नहीं होगा कि सारे दिन की जुदाई के बाद कुछ बातें करेगा, क्वालिटी टाइम बिताएगा उसके साथ। ऐसा रिश्ता तो था ही नहीं उनके बीच। पति पत्नी जब सारे दिन एक दूसरे से दूर रहने के बाद रात में मिलते हैं, तो उनके बीच प्यार भरी बातें होती हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिशें करती हैं, और इन सबके बीच एक दूसरे के करीब भी आते हैं। पर उनका रिश्ता बड़ा अनोखा था। अजय उससे दूर ही रहता, अपने फ़ोन में लगा रहता, और पास आता भी तो बस अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जब तक राधिका उसे उसकी मनमानी करने देती, खुश रहता, वरना नाराज़ होता, गुस्सा करता। इस महीने में राधिका ने ये भी जाना था कि उसे खाने से बहुत प्यार था। जब तक खाने में दो तीन सब्जी के ऑप्शन, मीठा, चटनी, रायता नहीं होता, उसके लिए मेन्यू पूरा नहीं होता था, और सब उसे उसकी पसंद का चाहिए होता था। नमक, मिर्च, मीठा सब बराबर होना चाहिए। ज़रा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो नहीं, उसका गुस्सा बोलता था, जिसकी भेंट इस एक महीने में राधिका कई बार चढ़ चुकी थी। उसके अलग ही नियम कानून चलते थे, जिन्हें राधिका की मर्जी हो या ना हो, पर उसे मानना पड़ता था। बातें तो उनकी होती ही नहीं थी, होती थी तो बहस। उसे राधिका पर प्यार सिर्फ तब आता था जब उसके जिस्म से अपनी हवस की भूख मिटानी होती थी, वरना तो उसकी याद भी नहीं आती थी। यही सब सोचते सोचते राधिका कब उस कमरे के बाहर पहुंच गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। रूम के बंद दरवाजे को देखकर उसने गहरी सांस ली, और जैसे ही उसे छुआ, दरवाज़ा खुल गया, और साथ ही अजय की नाराज़गी भरी कठोर आवाज़ भी आई। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? दूध गर्म कर रही थी, राधिका जवाब के लिए तैयार थी, और साथ ही उसने आगे बढ़कर अपने हाथ में मौजूद दूध का ग्लास उसकी ओर भी बढ़ा दिया। पर ये क्या, उसने तो दूध पीने की जगह अपनी उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट को अपने होठों के बीच दबा लिया था। मुझे दूध की ज़रूरत नहीं, तुम पी लो, वही अक्खड़ स्वभाव। बोलने के साथ उसने सिगरेट का धुआं राधिका के मुंह पर छोड़ा तो उसे खांसी आ गई, और हड़बड़ाते हुए वो चंद कदम पीछे हट गई, जबकि अजय के लबों पर शैतानी मुस्कान उभर आई थी। मुझे तो कहा गया था कि आप में कोई बुरी आदत नहीं है, मतलब आप शराब, सिगरेट, तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाते, पर पहले शराब और अब सिगरेट। राधिका थोड़ी संभली तो उसने नाराज़गी जाहिर की। सिगरेट की दमघोटू बदबू उसे चैन से सांस भी नहीं लेने दे रही थी। राधिका का सवाल सुनकर अजय के होठों के कोर जरा मुड़ गए, मानो उसकी बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। शादी में पूरा सच कौन बताता है, थोड़ा बहुत झूठ तो सभी बोलते हैं। तुम्हारे घर वालों ने नहीं बोला था झूठ कि उनकी बेटी सर्वगुण संपन्न है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं, खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। सब बढ़ा चढ़ाकर ही बताया था, पर तुम वैसी हो तो नहीं। जिस तरह उसने राधिका की खिल्ली उड़ाई थी, अपने इस अपमान पर उसका तन बदन सुलग उठा। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए कि क्या झूठ कहा था उन्होंने, और कैसी हूँ मैं? अजय ने अजीब निगाहों से उसे देखा, फिर निराशा भरे स्वर में बोला, तुम मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। शक्ल सूरत तो एवरेज थी ही, हाइट भी जितनी बताई थी उससे कम है, हील पहनकर भी मेरे बांह तक ही पहुंच पाती हो। जब साथ में खड़ी होती हो तो लगता है जैसे अपनी बीवी नहीं किसी बच्ची के साथ खड़ा हूँ। पति के सामने कैसे रहना चाहिए ये तक नहीं बता तुम्हें। अपने पति को कैसे खुश रखा जाता है, उसके सामने क्या बात कहनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें, खाना भी तुम अपनी तरह एवरेज बनाती हो, और क्या क्या गिनवाऊं। एक बार फिर अजय ने बड़ी ही लापरवाही भरे अंदाज में थोक के भाव में उसकी बेइज्जती की थी और अपना इतना अपमान राधिका सहन न कर सकी। और कुछ मत गिनवाइए, मैं समझ गई कि मुझमें कुछ अच्छा नहीं, बस एक सवाल के जवाब दे दीजिए, जब इतनी ही नापसंद थी मैं आपको, इतनी ही कमियां थी मुझमें, तो शादी क्यों की आपने मुझसे, जब देखने आए थे तब खुद क्यों नहीं आए थे आप। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में गुस्सा और नाराजगी छलकने लगी थी, पर फर्क किसे पड़ता था, अजय तो अपनी ही धुन में मग्न अब भी बोले जा रहा था, इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं मेरे पास, और तुम मेरे परिवार की पसंद हो, शादी से पहले कहाँ पता था मुझे कि ऐसी एवरेज लड़की मेरे माथे मरती जाएगी, मैंने तो अपनी फैमिली की चॉइस पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उस विश्वास का ये सिला मिला है मुझे। खैर, अब जब तुम फटे ढोल जैसे मेरे गले पड़ ही गई हो तो बजा रहा हूँ जैसे तैसे। अजय ने बेहद निराशा और अफसोस जाहिर की और अजीब निगाहों से राधिका को देखा। अपने शब्दों से आज उसने राधिका के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, जिसका दर्द वो खामोशी से सह गई और अपना चेहरा फेरते हुए बोली, अच्छी बात है, अब बस आप बालकनी में जाकर सिगरेट पीजिए, मुझसे इसका धुआं और बदबू बर्दाश्त नहीं, परेशानी तुम्हें है तो तुम जाओ, ये मेरा कमरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अजय ने अकड़ते हुए कमरे पर अपने स्वामित्व का प्रदर्शन किया। राधिका की निगाहें एक बार फिर उसकी ओर उठ गईं। ये बस आपका कमरा है, मेरा नहीं, दहेज में तुम्हारे माँ बाप ने ये कमरा भी दिया है क्या तुम्हें जो तुम्हारा होगा। अजय ने व्यंग्य भरी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए भाव उछाली, उसने बड़ी ही निर्ममता से जलील किया। पल भर को राधिका उसे तकती ही रह गई, फिर खुद बालकनी में चली आई। कुछ देर बाद, नाराज हो गई क्या, अजय ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए मोहब्बत से सवाल किया। उसके लहजे में मिठास खुली थी, राधिका के लबों पर तंजिया मुस्कान उभरी और जवाब देने की जगह उसने खामोशी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। चलो अब नाराजगी छोड़ो और अंदर चलो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना अब मुझे नींद नहीं आती। राधिका की ओर से कोई जवाब ना पाकर अजय ने मोहब्बत से इशारा किया। राधिका उस बार व्यंग्य भरी तीखे स्वर में बोल गई, मेरे नहीं, मेरे शरीर के बिना, क्योंकि अपनी चाहतें, जिस्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको मेरे शरीर की जरूरत पड़ती है, मेरी नहीं, और यहाँ भी आपको मेरे लिए आपका प्यार नहीं, आपकी काम वासना और जिस्म की भूख खींच कर लाई है।
राधिका के तीखे शब्द अजय के अहम को छलनी कर गए। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने राधिका को अपनी ओर घुमाया और अपनी उंगलियों को उसके गाल पर दबाते हुए बेरहमी से उसका मुंह दबोच लिया। हाँ, लाई है मेरी जरूरतें मुझे यहाँ खींचकर, तो क्या गलत है इसमें, पत्नी होती ही इसीलिए है ताकि अपने पति की जरूरतें पूरी कर सके, उसका और उसके परिवार का ख्याल रख सके, तुम्हें इसीलिए इस घर में लाया हूँ मैं, तो चलकर चुपचाप एक अच्छी पत्नी बनकर अपना फर्ज पूरा करो। अजय बड़ी ही बेरहमी से लगभग खींचते हुए उसे अंदर लेकर गया था और बेड के पास जाकर ऐसे उसका हाथ छटका कि वो सीधे बेड पर जाकर गिरी। कलाई में तेज दर्द उठा और आंखें छलक आईं। वो संभल भी नहीं सकी थी कि अजय भी बेड पर आ गया। राधिका के कंधे को अपनी हथेली से कस के पकड़ते हुए उसे झटके से अपनी ओर घुमा लिया। राधिका की नम आंखें उसकी हवस से भरी निगाहों से टकराईं। आप मुझसे शादी करके खुश नहीं है ना, राधिका के कांपते लबों से निकला ये सवाल सुनकर अजय ने तिरस्कार भरी दृष्टि उस पर डाली। तुम मुझे खुश नहीं रख सकी, क्या कमी रखी है मैंने आपको खुश रखने में, जो आप कहते हैं जैसे कहते हैं वैसे तो करती हूँ। राधिका के चेहरे पर बेबसी उभरी थी। सच ही तो कहा था उसने, अजय के हिसाब से उसने खुद को इतना बदल लिया था कि अब शीशे में देखकर खुद को पहचान तक नहीं पाती थी। उसकी कही हर बात मानती थी, उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश करती थी, फिर भी अजय की शिकायतें थी कि खत्म ही नहीं होती थीं, और यही बात उसके मन को तकलीफ पहुंचा रही थी। मेरा अभी तुमसे बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है, चुपचाप अपना पत्नी धर्म निभाओ, देखें कितना खुश करती हो तुम मुझे। अजय जैसे ही उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा, राधिका ने अपना चेहरा फेर लिया। आपके मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है, मुझे उल्टी हो जाएगी, राधिका का इतना कहना था कि अजय अपने आपे से बाहर हो गया। राधिका की सुनना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था, वो जो बस अपनी मनमानी करता था, चाहे प्यार से हो या जोर जबरदस्ती से, उसे बस अपनी इच्छाओं के पूरे होने से मतलब था। अजय ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी कलाइयों को दबोचते हुए बेड पर दबा दिया और खुद उस पर हावी होने लगा। टूटी चूड़ियां उसकी कलाई घायल कर गई थीं और अजय के इस व्यवहार ने उसके कोमल मन, भावनाओं, आत्मा को घायल कर दिया था। एक तरफ उसकी कलाई लहूलुहान थी तो दूसरी तरफ उसका वजूद। अपनी कामवासना की पूर्ति करने के बाद अजय शांत हो गया। अब भी उसने राधिका को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और हौले हौले उसकी गर्दन और खुले कंधों को अपने लबों से सहला रहा था। राधिका का चेहरा सपाट था, अब तक उसे आदत हो जानी चाहिए थी, पर आज भी तकलीफ होती थी उसे, लेकिन वो दर्द देखने वाला कोई नहीं था, अपने ही शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं। अजय का जब दिल चाहता है उसके जिस्म को नोचकर अपनी हवस मिटाता है, ये सोचकर उसे अपने वजूद से घृणा होने लगी थी। अगर पहले वाली राधिका होती तो ये सब कभी न सहती, पर इस राधिका के पैरों में परिवार की इज्जत, अपने मम्मी पापा के संस्कार, उनकी ख्वाहिश, समाज, रिश्ते की मर्यादा जैसी बेड़ियां बंधी थी और वो लाचार थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुले नील गगन में स्वच्छंद उड़ने वाले पंछी के पंखों को काटकर उससे उसकी आज़ादी छीनकर एक पिंजरे में कैद कर दिया गया था, और अब उस पिंजरे में कैद होकर घुट घुट कर जीना ही उसकी नियति थी। टू बी कंटिन्यूड। अजय के इस व्यवहार और राधिका की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाएं।